जब से पार्टी में वो हुआ उसके बाद से सब बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं मुझे। मुझे उनकी निगाहों से ही ह्यूमिलिएशन फील होने लगती है। अर्जुन उसकी बात सुनकर दुखी हो गया और शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोला, सॉरी गुड़िया, मेरे होते हुए शान तेरे साथ इतना बुरा सुलूक कर गया और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। आरवी ने उसकी बात सुनी तो तुरंत ही निगाहें उठाकर उसे देखते हुए बोली, नहीं भैया, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और जिसकी गलती थी माफ़ी भी वही मांगेगा। उसने इतने विश्वास से कहा कि अर्जुन निगाहें उठाकर उसे देखने लगा। आरवी के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे जो गवाह थे इस बात के कि वो उस बात को भूली नहीं है। शान की वो हरकत एक कड़वी याद बनकर उसके जहन में बैठ गई है जिसका असर कभी ना कभी देखने को ज़रूर मिलेगा। आरवी अब अपनी ड्राइवर के पास आकर बोली, काका आप घर चले जाइए, मैं कुछ देर में खुद घर आ जाऊंगी। जी मैडम जी, ड्राइवर ने तुरंत हामी भरी और वहां से निकल गया। आरवी भी अर्जुन के साथ वहां से निकल गई। वो दूसरी गाड़ी फिर से आरवी की कार के पीछे लग गई। ड्राइवर ने कुछ आगे जाकर शान को फ़ोन लगा दिया। शान ऑफिस में था और किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोच रहा था, तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगा जिससे वो अपनी सोच से बाहर आ गया। उसने फ़ोन पर निगाह डाली तो एक बार फिर आरवी के ड्राइवर का नंबर देखकर उसके भाव एकदम से सख्त हो गए। उसने तुरंत ही फ़ोन उठाकर सख्त लहजे में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से ड्राइवर ने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग सर, वो हमें आपको कुछ बताना था। कहो सर। मैडम अंशु बेबी को छोड़ने स्कूल आई थी और वहाँ उन्हें अर्जुन साहब मिल गए। मैडम ने हमें घर भेज दिया और खुद उनके साथ चली गईं। हम उन्हें रोक नहीं सके। ड्राइवर की बात सुनकर शान की मुट्ठियाँ कस गईं, उसकी भौहें तन गईं। उसने बिना किसी भाव के कहा, आप घर जाइए, बाकी मैं देख लूँगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पहले वो आरवी का नंबर डायल करने लगा, तभी उसे याद आया कि उसका फ़ोन का ठाकुर निवास में ही रह गया था। फिर उसने चिढ़ते हुए फ़ोन अपने पॉकेट में डाला और अपनी कार की चाबियां लेकर कैबिन से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ अर्जुन आरवी के साथ पास के ही रेस्टोरेंट चला गया, क्योंकि अर्जुन को सभी जानते थे और अब तो आरवी के हर जगह चर्चे थे। इसलिए अर्जुन ने जानबूझकर एकदम कॉर्नर वाला टेबल लिया जो कॉरिडोर के आखिरी में था। उस तरफ जल्दी से कोई जाता नहीं था, पर वहां लगे ग्लास वॉल की वजह से बाहर से उन्हें देखा जा सकता था, जिस पर दोनों का ही ध्यान नहीं गया। आरवी और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। अर्जुन ने उससे कुछ मंगवाने के लिए पूछा तो आरवी ने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता करके आई हूँ, अभी कुछ नहीं लूँगी। पहली बार अपने भाई के साथ कहीं बाहर आई हो, कुछ तो ले लो। अर्जुन के थोड़ा फोर्स करने पर आरवी ने उसका दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ठीक है तो आप मेरे लिए जूस मंगवा दीजिए। अर्जुन ने उसके लिए जूस ऑर्डर किया जो जल्दी ही आ गया। आरवी ने जूस का ग्लास उठाकर अपने लबों से लगाते हुए कहा, कहिए भैया, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? अर्जुन शायद इतनी देर से यही सोच रहा था कि बात शुरू कैसे और कहां से करे। जब आरवी ने ही पहल कर दी तो अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ते हुए उसे वो सवाल पूछा जिसे पूछने के लिए वो इतनी देर से हिम्मत जुटा रहा था। आरवी, क्या तुम जानती हो कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शान डैड से इतनी नफरत करता है? मतलब क्या शान या किसी और ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी बताया है? अर्जुन का सवाल सुनकर आरवी को जरा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं भैया, मुझे तो पार्टी वाली रात से पहले पता ही नहीं था कि मिस्टर मल्होत्रा की ठाकुर साहब से दुश्मनी है। मैं तो ठाकुर साहब को भी नहीं जानती थी। हाँ, पिछले कुछ वक्त से उनका रवैया ज़रूर बदल गया था मेरे प्रति, जिसकी वजह मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने कभी नहीं बताई थी। मुझे पार्टी वाली रात ही सब बातें पता चली थी कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है और क्यों वो मुझसे नफरत करने लगे। उसके बाद भी मैंने उनसे वजह पूछी कि आखिर अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से वो ठाकुर साहब से इतनी नफरत करते हैं, पर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन पार्टी वाली रात वो कह रहे थे कि ठाकुर साहब ने उनकी माँ के साथ। आरवी कहते कहते खामोश हो गई। उसको यूं खामोश होते देखकर अर्जुन ने ही आगे कहना शुरू कर दिया, जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। अतीत में क्या और कैसे हुआ ये तो मैं भी नहीं जानता, पर जितना मैं डैड को जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर शान भी झूठ नहीं कह रहा। अर्जुन की जलेबी की तरह टेढ़ी बात सुनकर आरवी ने कन्फ्यूज निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मिस्टर मल्होत्रा और ठाकुर साहब दोनों सही कैसे हो सकते हैं? फिर माँ ने भी यही कहा था कि ठाकुर साहब उन्हें धोखा दे रहे थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्होंने सच में माँ को धोखा दिया है, उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा की माँ के साथ गलत किया है। आरवी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। जितनी बातें उसे पता थी उस हिसाब से तो वो ठीक ही कह रही थी। अर्जुन ने शांति से उसकी बातें सुनी, बोला, फिर गंभीरता से बोला, आरवी तुम्हें जो बातें जिस तरह से पता चली तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल ठीक है। तुम डैड के पास रही ही नहीं इसलिए तुम ये कह सकती हो, पर मैं रहा हूँ इनके साथ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डैड कभी मॉम को धोखा दे ही नहीं सकते। वो आंटी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते और अंकल को मारना, इस पर तो मैं कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। अर्जुन की आखिरी की बात सुनकर आरवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानगी से पूछा, क्या कहा आपने, किसे मारा उन्होंने? अंकल को, मतलब शान के डैड को, ऐसा शान कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि डैड अपने जिगरी यार को मार सकते हैं। अर्जुन जैसे ही चुप हुआ, आरवी ने एक बार फिर हैरानी से कहा, डैड तो जिंदा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? अब हैरान होने की बारी अर्जुन की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से पूछा, तुम सुभाष अंकल की बात कर रही हो? आरवी ने तुरंत ही सर हिलाते हुए कहा, हाँ। अर्जुन अब और ज्यादा हैरान हो गया। उसने शान की कही बात याद करते हुए कहा, पर शान ने तो कहा था कि डैड ने अंकल को मारने की कोशिश की और इतने वक्त में अंकल को किसी ने देखा भी नहीं, शान बड़े पापा के साथ ही नजर आया। वो सब मुझे नहीं पता, पर डैड जिंदा है। हाँ, पर मैंने सुना है कि एक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपने चलने की ताकत खो दी थी और तभी से वो घर में ही रहते हैं, तो शायद वो उस एक्सीडेंट की ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनकी जान बहुत मुश्किल से बची थी। अब जाकर अर्जुन के समझ कुछ बात आई और उसने चिंता भरे स्वर में कहा, मतलब अंकल जिंदा है, वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, बस अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, पर जल्दी ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अर्जुन ने अब जाकर गहरी सांस ली। कहीं ना कहीं सुभाष जी के जिंदा और ठीक होने की खबर सुनकर उसके मन को सुकून सा मिल गया था। अर्जुन खामोश हो गया था, शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वहीं आरवी के दिमाग में अब भी अर्जुन की कही बात घूम रही थी। उसने गंभीर निगाहों से उसे देखते हुए कहा, भैया आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ठाकुर साहब गलत नहीं है? आरवी के सवाल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अर्जुन ने उसे देखा, फिर उसने अमरजीत जी की बताई सारी बात उसे बता दी। आरवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। अर्जुन ने उसे पूरी बात बताई, फिर आगे बताना शुरू कर दिया, पढ़िए मेरी कहानी कितनी मोहब्बत है।
ये कहानी जुड़ी है दो दिलों से जो जन्म के साथ ही एक अटूट बंधन में बंध गए थे, जिनका नाता एक दूजे उस वक्त जुड़ा था जब दोनों ही उस रिश्ते को समझने के काबिल नहीं थे, जिसे दोनों ही अपनाने से कतराते थे। पर क्या हो जब वो दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, एक दूसरे को सख्त नापसंद करते थे, एक दूसरे से दूर जाने के, उस रिश्ते को तोड़ने के बहाने ढूंढा करते थे, एक दूजे से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठे, पर उनकी मोहब्बत पर मौत का काला साया मंडरा जाए? क्या मौत को मात देकर वो एक दूसरे को पा सकेंगे? क्या किस्मत के इस खेल में उनके प्यार की जीत होगी? क्या वक्त की कसौटियों को पार करते हुए उनकी मोहब्बत मुकम्मल होगी? या दो लोग जिनका नाता उनके जन्म से जुड़ा था, उनमें से एक की मौत उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर देगी और उनके नसीब में लिखी वो अधूरी मोहब्बत एक कसक बनकर ताउम्र उन्हें तड़पाएगी?